2009 को कराची शहर में आशूरा के जुलूस पे दहशतगर्दी का एक इंतहाई खौफनाक बहीमाना सफाकाना हमला हुआ। इस हमले के नतीजे में 40 से ज्यादा कीमती जानें जाया हुई और 100 से ज्यादा लोग शदीद जख्मी हुए। इस हमले के फौरन बाद कराची की मुतअद्दिद मार्केट्स, पेपर मार्केट, प्लास्टिक मार्केट, बोल्टन मार्केट, फार्मास्यूटिकल मार्केट और लाइट हाउस में आतिश जद्दी के सैंकड़ों वाकयात हुए, जिसके नतीजे में एक मोहतात अंदाजे के तहत 15 से 20 अरब रुपए की इमलाक जलकर खाकस्तर हो गई। दहशतगर्दी के इस हमले के फौरन बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, कराची पुलिस और रेंजर्स ने यह दावा किया कि यह हमला एक सुसाइड खुदकश बम ब्लास्ट था, सुसाइड हमला था। और तालिबान के एक नए ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। लेकिन अब 4 दिन के बाद इन्वेस्टिगेटिव टीम्स ये दावा कर रही हैं कि यह हमला कभी भी एक सुसाइड खुदकश हमला नहीं था, बल्कि एक रिमोट कंट्रोल बॉम्ब डिवाइस था। दुनिया टुडे के स्पेशल प्रोग्राम में सीसीटीवी कैमरे फुटेज, जो इससे पहले कभी नहीं दिखाई गई, और वीडियो क्लिप्स की मदद से, जो आपने कभी नहीं देखे, हम ये आपको दिखाएंगे, ये साबित करेंगे कि ये इन्वेस्टिगेशन इस नतीजे पे कैसे पहुंची। और इस मुख्तलिफ तरस के प्रोग्राम में कराची ही शहर के एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और कॉलमनिस्ट मोहम्मद ताहिर मेरी मदद करेंगे, मेरे साथ हैं। और मोहम्मद ताहिर ने इस इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस को बहुत करीब से देखा है, उनकी नजर इस पे बहुत गहरी है और उनकी मदद से मैं ये प्रोसेस जो है इसको आप तक समझाने की, ले जाने की कोशिश करूंगा। ताहिर सर, वेलकम टू दिस डिस्कशन। नाज़रीन, सबसे पहले हम देखते हैं इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक साहब की 28 दिसंबर की ब्रीफ, जो मीडिया से वो बातचीत कर रहे हैं, इस हवाले से उसे देखते हैं।
जाहिर है कि जो भी ये हमला कर रहे हैं टारगेट करके कर रहे हैं, और पूरे जुलूस में या जुलूस के नजदीक एक आम आदमी को काले कपड़ों में सुसाइड जैकेट पहनकर दाखिल होने में, जाहिर है हमारी तरह ही है उसकी शक्ल होती है, हमारी तरह वो रहता है।
नाज़रीन, ये तो थे रहमान मलिक साहब, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर, जो 28 दिसंबर को कह रहे थे कि ये एक सुसाइड हमला था। अब हम देखते हैं क्लिप डीजी रेंजर्स का अगले दिन।
इतना बड़ा साइज था इस जुलूस का, प्रोसेशन का, इतने बड़े साइज में और फिर इतने बड़े एरिया में, 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर का एरिया बनता है, तो एक आदमी कहीं से भी दाखिल हो सकता है। तो थ्रेट तो हमें पता था, बताया हुआ था कि जी लाइकली है, हमने भी और पुलिस ने भी अपने पूरे अरेंजमेंट किए हुए थे। और उसी वजह से ही आपने देखा है कि हमारे, अगर हमारा जवान ये कुर्बानी ना देता या हमारी फोर्स का बंदा वहां पर मौजूद ना होता तो फिर ये नुकसान बहुत ज्यादा होता। ये आप गलत बयानी कर रहे हैं बिल्कुल, और ऐसी बात नहीं है, रेंजर्स तो वहां सुबह 5 बजे तक रहे हैं।
अच्छा ताहिर साहब, दोनों रहमान मलिक साहब, इंटीरियर मिनिस्टर और डीजी रेंजर्स जो हैं, वो दोनों 100% कन्विंस हैं। एक दिन भी गुजर गया है जब डीजी रेंजर्स बात कर रहे हैं, वो 100% कन्विंस हैं कि ये सुसाइड अटैक। ऐसा क्यों था?
न सिर्फ डीजी रेंजर्स वही और न सिर्फ वजीर दाखिला, बल्कि कराची पुलिस ने डिक्लेयर किया,
कराची पुलिस ने भी
जी ये डिक्लेयर किया कि एक सुसाइड अटैक है। और इसके लिए उन्होंने क्लेशे जो आज जो मतलब राइज है, हमारे आमतौर पर जो फिक्रे राइज है, वही इस्तेमाल किए, पामाल फिक्रे, वही फरसूदा नजरियात और वही फरसूदा थ्योरीज। उन्होंने कहा कि जाए वकुआ पर कोई गढ़ा मौजूद नहीं है, जब भी सुसाइड अटैक होता है तो एक गढ़ा होता है, वो उन्होंने कहा नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि हमें जाए वकुआ से लाशों के उसी तरह टुकड़े मिले हैं जिस तरह के एक सुसाइड अटैक पर मिलते हैं, वो इसकी कोई इमीडिएट कॉज या कोई।
ऐसा कैसे हुआ जब ये सुसाइड अटैक नहीं था तो लाशों के ऐसे टुकड़े कैसे मिले?
वो हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं कि इसके लिए कोई और रीजन भी हो सकती है, चूंकि हम पामाल फिक्रों और फरसूदा नजरियात में ही रहते हैं और उस वाकयात को उन्हीं तनाजों में देखते हैं, तो हमने उसी तरह के वाकयात यहाँ पर दोहराए और इसी किस्म के जुमले भी दोहराए। फिर पुलिस को मौका से एक लाश मिली, वो लाश जो है वो उसका ऊपर का जो धड़ था वो पूरा मौजूद था, नीचे वाला हिस्सा मौजूद नहीं था, तो उन्होंने कयास कर लिया कि शायद सुसाइड अटैक का इफेक्ट है। फिर कुछ ही देर के बाद उन्हें जो है वो एक घर की छत से एक सर मिला, और उनका ये ख्याल था कि ये जो सर है ये खुदकुश हमलावर का है। मगर क्या हुआ, इसके फौरन बाद एम्बैरेसमेंट का अमल शुरू हुआ।
एम्बैरेसमेंट का अमल जो है, जैसे कहते हैं आप, एम्बैरेसमेंट का अमल ये कैसे शुरू हुआ?
ये शुरू हुआ, अभी कोई खास तहकीकात नहीं हुई है, एम्बैरेसमेंट का अमल इन्हीं थ्योरीज में शुरू हुआ। और वो इस तरह हुआ कि जो खुदकुश हमलावर का सर जिसे करार दिया गया था वो वहीं पर मौजूद मौजूद जो स्काउट तंजीम थी उसका एक आदमी निकला और उनके लवाहिकीन ने उसे मुजम्मिल के नाम से शनाख्त कर लिया। वो जो धर्म मिला था वो हमें पता ये चला कि वो ईदी का एक रजाकार था। इसके बावजूद भी उन्होंने अपना ये इसरार खत्म नहीं किया। मतलब अफसोसनाक बात यह है कि उसके
तीनों एजेंसीज यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर भी, रेंजर्स भी और कराची पुलिस भी
ये कह रही है, और एक पोलिटिकल इनपुट भी इसमें आ गया। एमकेएम के कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन साहब ने जो है वो वाक्य का 4:13:17 पर यह वाक्य हुआ था और 4:17:18 पर वो एक टीवी चैनल पर उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कुछ इस तरह के फिक्रे कहे जिसमें ये कहा कि मैं अपने पश्तून आबादियों को उससे मुखातिब हूँ, अपने पश्तून भाइयों से मुखातिब हूँ कि वो अपने एक चौकीदारी का निजाम कायम करें, और इस तरह के वाकयात होने लगे। इस तरह एक अंगुष्टनुमाई भी हो गई और इस वकूए का एक सियासी रंग भी।
यानी उनका मतलब ये था कि शहर जो है गैर महफूज हो गया है, चूंकि मतलब खतरे का इजहार कर रहे हैं
और सुसाइड अटैक का मामला जो है वो अब सिर्फ इंतजामी मशीनरी तक नहीं रहा, उसमें एक पॉलिटिकल कलर भी आ गया। आम तौर पर परसेप्शन ये डेवलप हो गया कि ये एक सुसाइड अटैक था और अब जो है वो इस पर कोई दूसरी थ्योरी जो है वो उस वक्त तक।
अच्छा, फिर ये सूरत हाल रिवर्स क्या, ये सारा का सारा जो रिवर्स कैसे हो गया?
ये रिवर्स तो आपके पास मौजूद है, कुछ स्लाइड्स उसकी रोशनी में समझने में ज्यादा आसानी होगी। हुआ ये कि जो वीडियो फुटेजेस थी कई घंटों पर मुहित, जिसके बहुत सारे हिस्से जो है वो शायद एक्सक्लूसिवली आपके पास मौजूद है, उन वीडियो फुटेजेस में उन्होंने कुछ चीजें, कुछ ऐसी जगह उनकी निशानदेही हुई जिसमें उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ चीजें मौजूद थी और अब नहीं है। वहां से सोचने का अमल शुरू हुआ,
कुछ चीजें जो पहले मौजूद थी
और अब नहीं,
कुछ स्ट्रक्चर्स जो पहले
मौजूद थे वो अब नहीं है,
उस इलाके में वो नहीं है। अच्छा, ये पहली स्लाइड है जो आपने, ये क्या है
जी? मोहित साहब, आप ये जो स्लाइड देख रहे हैं ये कोई कल की या जो है वो 28 दिसंबर के वाकये के नहीं है, ये 10 साल पहले का, ये आपका कराची है एम ए जिना रोड, 10 साल पहले की ये तस्वीर है,
तकरीबन 1999 की पिक्चर,
1999 की। लेकिन ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं मेटल बॉक्स 9 फिट इसकी जो है ना वो 9 फिट ये मेटल बॉक्स है, ये यहाँ पर 1996 से मौजूद
अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस औराक
जी, और ये एक वहां पर जो है वो एक ट्रस्ट है, अब्दुल कादिर ट्रस्ट, जिसके बानी चेयरमैन है हाजी कासिम साहब, वो इस पूरे इदारे को रन करते हैं। इन्होंने कराची में जा बजा अंजुमन ये मुकद्दस औराक के तहत इस तरह के मेटल बॉक्स लगाए हैं जिसमें जो कुरान पाक के औराक होते हैं और अहदीस के औराक होते हैं उसकी बेहरमती ना हो, ये उन्होंने इस तरह का बॉक्स यहाँ पर लगाया हुआ है
मुकद्दस औराक को महफूज रखने के लिए। सड़कों के कराची में इस किस्म के मेटल बॉक्स लगे हुए
और ये 1996 से है, 1996 से इस जगह पर ये नस्ब है कराची, इसके बाद और एम ए जिना रोड इसके बाद तब्दील हो गया है, मगर ये बॉक्स मौजूद है।
अगला क्लिप देखते हैं,
ये ताजा क्लिप है। देखिए आप, इसमें आपको दो जो है वो इम्पोर्टेंट चीजें नजर आती है, एक तो ये कि इसके बराबर में एक खंबा है और जो बहुत ही मजबूत है, और ये जो है वो स्ट्रीट लाइट का खंबा है, और ये जो बॉक्स है उसका दूसरा इसका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये कि वो सुतूनों के साथ गड़ा हुआ है, ये रखा हुआ नहीं है, यानी फुटपाथ के अंदर सुतूनों के साथ प्लस्तर के साथ गड़ा हुआ है, ये रखा हुआ नहीं है कि जिसको कोई उठा के ले जा सके, ये दो इम्पोर्टेंट है और ये फौरी तस्वीर है या हालिया दिनों की तस्वीर है।
इसके अगले हम इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, पहली और इसकी दूसरी की सिग्निफिकेंस क्या बनती
है? ये दो बातें इससे प्रूव होती है, एक बात ये प्रूव होती है कि बॉक्स जो है वो कोई नया फिनोमेना नहीं है,
ठीक है,
यानी लोगों के हाफजे में मौजूद है, चलते फिरते लोगों को ये पता है कि यहाँ पर एक बॉक्स होता है और वो बॉक्स इस हालत में होता है कि उसको उठाकर ले नहीं जाया जा सकता, ये यहाँ पर जो है वो गड़ा हुआ है।
और ये बॉक्स के सामने जो सड़क है ये
एम ए जिना रोड है, लाइट हाउस का बिल्कुल सामने का।
अगला देखते हैं स्लाइड,
ये देखें उसी बॉक्स के साथ ये ईदी की जो है वो एम्बुलेंस खड़ी है और हमें वो बॉक्स उसी तरह नजर आ रहा है जिसके
बॉक्स के और ईदी के एम्बुलेंस के दरमियान में पोल है,
पोल
जो सीधा है, स्ट्रेट पोल है
जी, स्ट्रेट है, और आप ये देख रहे हैं कि उस पर कुछ पोस्टर्स वगैरह लगे हुए हैं।
अच्छा, इसका अगला क्लिप देखते हैं,
ये वही है चंद सेकंड पहले, ये ब्लास्ट से चंद सेकंड पहले की ये विजुअल आप देख रहे हैं।
अच्छा, ये किन कैमरास ने रिकॉर्ड की है?
ये इत्तेफाक ये है कि आप अगले विजुअल्स में देखेंगे एक खंबा है जो इसके इफेक्ट से जो है वो टर्न हो जाता है, वहां पर जो है वो एक खुफिया कैमरा लगा हुआ था।
ठीक, अगला क्लिप देखते हैं,
ये ब्लास्ट हो चुका है, वो जो बहुत ही ज्यादा विजिबल बॉक्स था मेटल बॉक्स 9 फिट उसकी जो है वो चौड़ाई थी, वो अब नहीं है, मुकम्मल टोटल डिसअपीयर हो गया है।
एक तो पोल हम देखते हैं कि टेढ़ा हो गया है,
वो जो पोल है वो आपका स्ट्रीट लाइट।
तो पोल हम देखते हैं कि टेढ़ा हो गया है।
वो जो पोल है वो आपका स्ट्रीट लाइट का है और ये उसका इफेक्ट है। ये देखिए पूरा कर्व हो गया है और आप ये देख रहे हैं कि वो बॉक्स बिल्कुल डिसअपियर है।
जो बॉक्स कुरानी और आपका बॉक्स था वो टोटली डिसअपियर हो गया।
डिसअपियर हो गया। ये जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब विजुअल्स देख रहे थे तो वो बॉक्स नजर आ रहा था। जब उन्हें एकदम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को पता चलता है कि यहाँ पर बॉक्स मौजूद नहीं है।
अच्छा, ये वो क्लिप्स है, ये वो सीसीटीवी कैमरा के क्लिप्स है
जिसके बाद सोचने का एक अमल शुरू हुआ।
जिसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ये एहसास हुआ कि यहाँ ये बॉक्स था, ये बॉक्स जो है ये डिसअपियर हो गया है। इस बॉक्स की क्या अहमियत है, क्या सिग्निफिकेंस,
और ये कैसे गायब हुआ,
कैसे
गायब हुआ, ये सवाल पैदा हुआ कि यहाँ पर जो बॉक्स था वो क्यों नहीं है।
इसका
अच्छा, और उसी के साथ अगले के लिए नजर आता है कि ये देखिए फुटपाथ जो जहाँ पर ये गड़ा हुआ था वो फुटपाथ जो है वो डैमेज हुई है नजर आ रहा है, और वो एम्बुलेंस जो उसके साथ खड़ी थी उसका एक हिस्सा।
मुझे ये समझ आ रही है कि ये जो सीसीटीवी कैमरा का विजुअल है ये दूसरी तरफ से है। पहले हम इस तरह से देख रहे थे कि हमें
दूसरा जाविया है।
हाँ, दूसरा जाविया, यानी हमें उस वक्त पूरी वैन नजर आ रही थी। अब हमें वैन नजर आ रही है कि जब बॉक्स फटा है
जी
तो वैन का ये पूरा हिस्सा जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, और सामने जना रोड है।
जी हाँ, जी हाँ। अब यहाँ पर जो है वो ये बात एस्टेब्लिश होती है, मतलब इस मफूजे ने जन्म लिया जो बाद में एस्टेब्लिश हो गया कि क्या उस बॉक्स में धमाका खेज मवाद था।
ठीक, तो लेकिन ये कैसे इतने कॉन्फिडेंस से कहा जा रहा है कि ये एक टाइम डिवाइस नहीं थी, ये एक रिमोट कंट्रोल था। आखिर ये हम कैसे,
ये सवाल देखें, टाइम डिवाइस और रिमोट कंट्रोल से पहले जो है वो ये बात प्रूव हो कि ये यही जगह थी, इसी में हुआ, और वो बॉक्स कहाँ गया, तो वो हमें अगली स्लाइड से पता चलता है कि उसके बॉक्स जो है वो गया कहाँ।
अगली स्लाइड देखते हैं, अगली स्लाइड भी इसी साइड की है, इससे अगली स्लाइड दिखाई,
और एक स्लाइड, ये एक और जाविये से आप देख रहे हैं तस्वीर को।
ठीक है, अगली स्लाइड दिखाएं।
ये
अच्छा, ये मेटल,
ये देखें, ये वो मेटल बॉक्स के मुख्तलिफ पीस है जो आप देख रहे हैं। तो वो गायब नहीं हुआ, वो पीस हमें वहां मिल गए।
अच्छा, वो जो मेटल बॉक्स हमने स्लाइड वन और स्लाइड टू में शुरू में देखा था,
जी जी,
ये उस मेटल बॉक्स के जो कुरानी और आग का जिसमें रखते थे, ये उसका हशर हुआ।
जी हाँ, ये उसका हशर हुआ।
तो इसके अंदर वो डिवाइस थे,
तो ये बात जो है वो पाए सबूत को पहुंच गई कि दरअसल वो बॉक्स फटा था और वो जो मवाद था, एक्सप्लोसिव जो मटेरियल था, वो उस बॉक्स में था।
अच्छा, इसके आगे की स्लाइड देखते हैं,
ये वही उसके पीस है।
तो ये जब पीसेस लगे होंगे मेटल के, तो जो लोग वहां जख्मी हुए हैं, ये जो धड़ है जो हम बहुत सी पिक्चर्स नहीं दिखा सकते, जो इंसानी जिस्म कटे हुए हैं, बुरी तरह से कट गए हैं, वो इस मेटल के
उनको लगे हैं, वो फोर्सफुली जो है वो उन जिस्मों को लगे हैं और वो उनके टुकड़े हुए हैं। और आप देखें कि वो आपने वो बॉडीज देखी है जो जाहिर दिखाई नहीं जा सकती, उन बॉडीज से पता चलता है कि सिर्फ वो कटे हैं, उन पर कोई और इफेक्ट नहीं आया, कोई और चीजों का। आमतौर पर जो सुसाइड अटैक में आमतौर पर ये होता है कि सुराख हो जाते हैं बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों पर जो है वो मतलब उसके निशानात पड़ते हैं, उस तरह के निशानात नहीं है। सिर्फ इस मेटल से जो है वो बॉडीज जो है वो टुकड़े हुई है वो हमें नजर आता है।
अच्छा, एक इसमें स्लाइड ऐसी भी थी जो मैंने देखी है जिसमें हमें नट्स एंड बोल्ट्स जो है वो नजर आते हैं,
वो इसके बाद वाली।
अच्छा, देखते हैं अगली स्लाइड, देखते हैं मेटल शीट।
जी हाँ, जी हाँ।
तो एक चीज तो एस्टैब्लिश हो जाती है कि वही वो बॉक्स जो वहां था मेटल का, उसके
अगली स्लाइड,
उसके अगली स्लाइड देख,
ये आपको नट एंड बॉन्ड, ये 14 साइज के जो है वो बॉन्ड्स आप देख रहे हैं।
इनकी क्या अहमियत है, इनको क्यों यूज करते हैं ये लोग?
जब ये एक्सप्लोसिव मटेरियल तैयार होता है तो आमतौर पर सुसाइड अटैक में जो मैंने देखा है, मैं बहुत सारे इस तरह के वाकयात में जाए वकुआ पर पहुंचा हूं और मैंने चीजों को अपनी आंखों से देखा है, आमतौर पर छरे और ब्लेड्स इस्तेमाल की जाती है, और वो होता ही है कि वो नुकसान को बढ़ाने के लिए, और जो टारगेट सोचा जाता है उस टारगेट को मैक्सिमम अचीव करने के लिए होता है। यहां पर हमने ये देखा कि छरे नहीं थे न ब्लेड्स थी, जो है वो नट्स और आपको बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, ये उन्होंने इस्तेमाल किए ताकि ज्यादा दूर दूर तक जाए और ज्यादा असरात हो और ज्यादा नुकसान हो, और वो हमें नजर भी आया, ये जमा किए गए जो है वो नट्स।
मैं फिर उस सवाल की तरफ आता हूँ कि ये कैसे पता चला कि ये एक टाइम्ड ڈیوائس نہیں تھی، ٹائم بوم نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ریموٹ کنٹرول ڈیوائس تھی جس کو عین موقع پہ ایک ریموٹ کنٹرول سگنل کے ذریعے اڑا گیا.
جی مہیر، اس پر بہت بحث ہوئی مختلف لوگوں کے درمیان، اور مطلب ہم لوگوں نے بھی اس بحث کا حصہ لیا، کافی لوگ گفتگو کرتے رہے. دیکھیں، عام طور پر جو ٹائم ڈیوائس ہوتی ہے اس میں دو تین چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. یہ تو 20-25 منٹ آدھے گھنٹے سے زیادہ کی ٹائم ڈیوائس نہیں ہوتی، اور اس میں جو ہے وہ آپ کے پاس کیلکولیٹڈ ٹارگٹ ہوتا ہے جس میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ جو آپ کا ٹارگٹ ہے وہ اسی ٹائم پر میٹ کر لے گا یہاں جہاں پر آپ یہ ایکسپلوسیو مٹیریل رکھتے ہیں. لیکن جو جلوس ہوتا ہے اس کی ٹائمنگ ڈیسائیڈ نہیں کیے جاتے، وہ پتا نہیں ہوتا کہ کب کہاں سے گزرے گا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات ہے کہ وہ جلوس جو ہے وہ ایک واک تھرو گیٹ سے گزرا تھا، میٹل ڈیٹیکٹر وہاں پر موجود تھے، وہاں سے وہ لوگ گزرے تھے، اور یہ پتا چل گیا تھا کہ مطلب اس طرح کا ٹائم جو ڈیوائس ہے وہ مٹیریل وہاں پر رکھنے کے لیے آپ کو یہ تعین کرنا پڑتا ہے کہ آپ جب رکھ رہے ہو تو کتنے عرصے تک آپ اس ایکسپلوسیو مٹیریل کو وہاں رکھ سکتے ہیں. یہ امپورٹنٹ اسپیکٹ ہوتا ہے اس کا. اگر وہ جگہ جہاں پر یہ چیز رکھی گئی ہے وہ اگر دو دن پہلے کارڈن آف ہو چکی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دو دن سے پہلے آپ رکھیں گے تو اتنی لمبی ڈیوریشن میں آپ کو یہ ایکسپلوسیو مٹیریل دو دن تک کہیں نہیں رکھ سکتے.
آپ کا مطلب ہے کہ جو ٹائم ڈیوائس ایکسپلوسیو ہوتے ہیں ان کو کئی کئی دن کے لیے نہیں رکھا جا سکتا، وہ 6-7-8-15-10 گھنٹے تک تو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں.
شاید 15 گھنٹے کے لیے بھی، آدھے گھنٹے تک عام طور پر ہمیں جو فینومینا نظر آیا ہے کہ وہ 8 گھنٹے کے عرصہ میں جو ہے وہ عام طور پر پھٹ جاتا ہے، وہ ٹائم جو سیٹ کیا جاتا ہے وہ اتنا ہی.
جبکہ یہ علاقہ بہت زیادہ چیک کیا گیا کہ جلوس گزرنے سے پہلے. لیکن پھر بھی ایک سوال بہت ہی فنڈامنٹل بیسک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پورا روٹ جو ہے اس کو چیک کیا گیا اور بھرتا سے چیک کیا گیا، اور یہ اتنا بڑا 8-10 فٹ کا وہاں پہ ایک باکس، ایک سٹرکچر قرآنی اور آگ کا، یہ وہاں کیسے رہ گیا جس کے اندر ایکسپلوسیو میٹیریل؟
یہ بالکل مہی صاحب بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ صرف یہ حصہ جو ہے وہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دیکھیں جاسوسی کتوں کی مدد لی گئی، پورا
علاقہ،
پوری سڑکوں کی جو ہے وہ پڑتال ہوئی، لیکن چونکہ یہ مقدس اوراق کا باکس تھا وہاں جو ہے وہ کتوں کی رسائی سے کوئی چیز نہیں دیکھی جا سکتی تھی، تو صرف اس باکس کو رہنے دیا گیا تھا، باقی پورے علاقے کو چھان مارا گیا.
بہت بڑا لیپس بن جاتا ہے سیکیورٹی.
ہاں، اس کے لیے ایک دوسرا متبادل کوئی راستہ ہونا چاہیے تھا، یہ باکس نہیں دیکھا گیا،
اس باکس کو چیک ہی نہیں کیا گیا. تو اگر ایک باکس کی اس طرح کی سچویشن ہو جس کو سنیفر ڈاگز نہ ٹچ کر سکتے ہوں تو کوئی اور طریقہ تھا ہی نہیں کیا پولیس کے پاس؟
دیکھیں، ان تصویروں میں نظر آتا ہے کہ ایک دروازہ ہے اس کا جو کافی بڑا ہے، اس دروازے کا لاک جو ہے وہ تبدیل کیا جا سکتا ہے، توڑا جا سکتا ہے، چینج کیا جا سکتا ہے، یہ سارے کام ہو سکتے ہیں. کسی بھی ایک لے مین جو وہاں سے گزر سکتا ہو اور وہ ایوریج سینس رکھتا ہو، وہ اس کے ذہن میں کوشچن پیدا ہو سکتا ہے کہ یہاں اس کو چیک ہونا چاہیے. لیکن مجھے حیرت ہے کہ اتنے اہم ادارے، اتنے سارے جو ہے وہ معاملات وہاں پر چل رہے تھے، پھر پیچھے دو دن جو ہے وہ مسلسل دھماکے ہوتے آ رہے ہیں، جب دو دن دھماکے ہو چکے ہوں 8 اور 9 محرم کو، 26 اور 27 دسمبر کو جب ہو چکے ہوں، تو تمام انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز اس بات پر متفق ہے کہ جو آپ کا لیول آف تھریٹ ہے اور جو پرسنٹیج آف تھریٹ ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے، انکریز ہو جاتا ہے. تو یہ کیوں ایسا ہوا؟ یہ ایک بہت بڑا
نیگلیجنس ہے، یہ لیپس ہے، اور اس کو ایڈریس کرنا جو ہے
بہت ضروری ہے.
ظاہر میں آپ کو روکتا ہوں، اس موقع پہ ہم بریک لیتے ہیں. ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں، اور اس بریک سے پہلے کا جو سم اپ ہے وہ یہ کہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ ایک سیوسائڈ اٹیک نہیں تھا، کس طرح سے انویسٹیگیٹو ادارے جو ہیں وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ خودکش حملہ نہیں بلکہ ایک ریموٹ کنٹرول ایکسپلوسیو ڈیوائس تھا جسے قرآنی اور آپ کے ایک باکس میں ایم اے جنا روڈ کے سائٹ پہ پہلے سے رکھا گیا تھا، اور کس طرح سے جو اس وقت پولیس تھی وہ اس نے اس کو مس کیا. وقفے کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو ہم یہ سوال اٹھائیں گے کہ جس قسم کا آرسن ہوا، جس قسم کی آتش زدنی کے واقعات ہوئے، کیا وہ محض اسپونٹینیس تھے، فوری طور پہ ہوئے، یا اس کے پیچھے بھی ایک گائیڈڈ ہینڈ ہمیں نظر آتا ہے؟ ایک بریک کے بعد. ناظرین، ویلکم بیک ٹو دنیا ٹوڈے. ناظرین، پروگرام کے اس پہلے حصے میں ہم یہ بات تو واضح کر چکے ہیں کہ کس طرح یوم عاشورہ کے روز کراچی میں ہونے والا دہشت گردی کا حملہ کوئی خودکش سیوسائڈ بوم اٹیک نہیں تھا بلکہ ایک ریموٹ کنٹرول بوم ڈیوائس تھی. لیکن اس کے ساتھ ہی جو دوسرا بڑا اہم پہلو ہے کہ اس کے فوراً بعد پورے کراچی شہر میں تمام متعدد مارکیٹس میں آتش زدنی کے سینکڑوں واقعات ہوئے، پھیل گئے پورے شہر میں، اور انہیں روکنے والا کوئی نہیں تھا. جبکہ ڈی جی رینجرز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رینجرز ہر وقت موجود تھی اور سیکورٹی پرووائڈ کر رہی تھی. ڈی جی رینجرز کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اسے ایک بار پھر سنتے ہیں، और फिर बात करते हैं।
ना बड़ा साइज था इस जुलूस का, प्रोसेशन का, इतने बड़े साइज में और फिर इतने बड़े एरिया में, 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर का एरिया बनता है, तो एक आदमी कहीं से भी दाखिल हो सकता है। तो थ्रेट तो हमें पता था, बताया हुआ था कि जी लाइकली है, हमने भी, पुलिस ने भी आपने पूरे अरेंजमेंट किए हुए थे, और उसी वजह से ही आपने देखा है कि हमारे, अगर हमारा जवान ये कुर्बानी ना देता या हमारी फोर्स का बंदा वहां पे मौजूद ना होता तो फिर ये नुकसान बहुत ज्यादा होता। ये आप गलत बयानी कर रहे हैं बिल्कुल, और ऐसी बात नहीं है, रेंजर्स तो वहां सुबह 5 बजे तक रहे हैं।
देखिए, अब रेंजर्स तो वहां सुबह 5 बजे तक रही है, डीजी रेंजर्स 29 दिसंबर को कह रहे हैं कि रेंजर्स सुबह 5 बजे तक वहां रही है, लेकिन अभी जब हम और मतलब सीसीटीवी की फुटेज देखते हैं, हम देखते हैं कि जब लूटमार शुरू हुई, दुकानों पे हमले शुरू हुए, आतिशबाजी के वाकयात शुरू हुए, तो उन सड़कों पे एमएजना के रोड पे, उसके साइड जो रोड थी उस पर किसी किस्म की पुलिस या रेंजर प्रेजेंस जो है वो मौजूद नहीं थी।
जी मोहित, हम ये देखते हैं कि जो है वो रेंजर्स अपनी पोजिशनों को उन्होंने विड्रॉ कर लिया और वो प्रोसेशन और ये जो आतिशबाजी के वाकयात हो रहे हैं उनसे बहुत ही दूर पीछे चले गए, विजिबल नहीं रहे। और हमने ये देखा कि जो लिंक्स रोड है, उन लिंक्स रोड्स पर जो पुलिस तैनात थी वो वहां से फरार हो गई, चली गई, अपनी अपनी गाड़ियां उन्होंने उठाई और वहां से खामोशी से चले गए। उसको जो कॉर्डन किया हुआ इलाका था, वो कॉर्डन किया हुआ इलाका भी जो है वो बहुत ही थोड़ी देर में जब वहां से पुलिस विड्रॉ हुई तो जिन गाड़ियों के साथ वो कॉर्डन किया गया था या जिन रुकावटों के साथ था वो रुकावट।
हालांकि ये बात बड़ी वाजह है कि कराची में जब भी दहशतगर्दी के वाकयात होंगे या जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत जब हुई उनपे उनकी असैसिनेशन हुई तो उसके बाद कराची में हमेशा रैंडम वायलेंस भी हो जाती है।
जी बिल्कुल हो जाता है, लेकिन आप देखें, आप जो फुटेज इस वक्त देख रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फुटेज है मोहित साहब। ये देखें आप, इसमें एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट चीज ये देख रहे हैं कि चंद एक लोग हैं, अभी ये कोई हुजूम नहीं है जो यलगार कर रहा हो और जिनको रोका ना जा सके।
ये फुटेज जो बम ब्लास्ट है उसके अगले 1 घंटे के अंदर अंदर की फुटेज है।
1 घंटे, ये आप 3 मिनट के अंदर अंदर की फुटेज देख रहे हैं, 3-4 मिनट की, जब ये गुस्से में एक वाकया हुआ है, प्रोसेशन के लोग हैं, दे आर पार्ट ऑफ द प्रोसेशन, वो जाहिर है उनके लिए ये बहुत दिलदोज वाकया है, मगर ये जो गुस्सा दिखा रहे हैं वो ईंटों से दिखा रहे हैं। आपको यहाँ पर सिग्निफिकेंटली 2-3 चीजें नजर नहीं आती, इनके पास आपको कोई खतरनाक जो है वो आला नजर नहीं आता, आपको कोई कटर नजर नहीं आता, यहाँ पर पत्थर है और लकड़ी है, जो लकड़ी के डंडे हैं जो वहीं से उठाए हुए हैं, उससे ये जो है वो दुकानें तोड़ रहे हैं। इसके बिल्कुल साथ एक लुंडा बाजार है, वहां पर भी इसी तरह के 6-7 लोग हमें मुख्तलिफ फुटेजेस में नजर आते हैं कि वो कर रहे हैं। ये वाकया है, और ये इस दिलचस्प बात यह है कि ये वहां पर ये वकुआ हो रहा है जहां पर अभी थोड़ी देर पहले पुलिस खड़ी थी, और 1 मिनट 12 सेकंड के बाद
इसकी के अब जबकि इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस एक आगे पहुंच चुका है, इन्वेस्टिगेशन ने उसमें बहुत प्रोग्रेस भी की है, इसकी कोई बात समझ आ रही है? आप इस प्रोसेस से वाकिफ भी हैं कि पुलिस की जो टोटल डिसअपीयरेंस है कराची की सड़कों से, उसकी क्या एक्सप्लेनेशन?
देखिए, मसला यह है कि किसी के पास मंसूबा नहीं था, किसी के पास इंस्ट्रक्शन नहीं थी, ये एक रूटीन की मश्क के तौर पर लिया गया, जिस तरह आमतौर पर होता है कि लोग खड़े कर दिए जाते हैं, उन्होंने लोग खड़े कर दिए। ये नहीं सोचा गया कि इस तरह का वाकया होगा तो किसी को क्या करना है, उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं थी और लोग इनडिसिसिव थे। जैसे ही वकुआ हुआ, यहां से पुलिस चली गई, यहां जो कॉर्डन किया हुआ था, कोई 2 वेगन यहां पर खड़ी हुई थी ये इस प्रोसेशन से पहले, ये जो वकुआ हो रहा है उससे पहले, और जो है वो वेगने चली गई और ये 6-7 लोग अंदर दाखिल हो गए। अगर वही पुलिस यहां होती तो ये इन्हें रोक सकती थी।
अच्छा, अभी जो सीसीटीवी फुटेज है, जो इतनी डिटेल सीसीटीवी फुटेज है जिसमें चेहरे पहचाने जाते हैं, शक्लें पहचानी जा सकती हैं, ये सीसीटीवी फुटेज कैसे बनी है?
देखिए, ये वहां पर उस 3-4 जगहों की ये मुख्तलिफ फुटेजेस है, हम देख रहे हैं 2-3 कैमरे लगे हुए थे वहां पर, वहां से मुख्तलिफ फुटेजेस कई घंटों के हमने हासिल किए हैं।
ये कौन सा इलाका है?
ये वही वाला लिंक रोड है जहां पर ये वकुआ हुआ है, उसके साथ ही धमाके के साथ वाला ही ये लिंक रोड है, ये वहां ये वाकया हुआ है। यहां पर ये देखे आप, ये ऑप्टिकल हाउस है, उसी के साथ पेपर मार्केट है, ये सारी चीजें जला दी गई है। उसके बिल्कुल रोड के दूसरी तरफ लुंडा बाजार है, वो भी जला दिया गया है, और ये 1 मिनट 12 सेकंड हुए थे जब यहां से पुलिस चली गई थी यहां से, और जो है वो 2-3 मिनट हुए थे कि ये रिएक्शन शुरू हो गया।
लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो इनिशियल क्राउड्स हैं, ये इनिशियल क्राउड्स जो हैं, ये बिल्कुल भी कोई खास ऑर्गेनाइज नहीं है,
नहीं है, और कोई डायरेक्शन नहीं है,
तीन कर रहे हैं, कोई डायरेक्शन नहीं है,
और एक जिगरदोज वाकया हुआ है, एक रूह फरसा वाकया हुआ है जिस पर उन्हें गम है, गुस्सा है, यानी वो लोग जो यौम आशूर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मातम कर रहे थे, वो खुद उनके यहां गिरिया मातम वाली सूरत-ए-हाल पैदा हो गई, उनके घरों में मातम बपा हो गया, उनका ये गुस्सा यहां पर जायज था, लेकिन यहां पर
इस किस्म की जो वॉयलेंस है, ये वो जो 15 से 20 अरब की जो इमलाक जलाकर खाकस्तर कर दी गई है उसको ये वायलेंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती।
नहीं कर सकती। देखिए मसला ये है कि ये जो वाकया हुआ है ना, यहाँ पर अगर वो पुलिस मौजूद होती है और इनको रोक लेती तो दूसरा वो वाकया जो क्राइम कमिट हुआ है वो शायद ना होता और वो हो ही नहीं सकता था। इसके बाद हम देखते हैं ग्रेजुअली इनको लोग ज्वाइन करना शुरू।
अब ये देखिए ये फुटेज जो है
और अब आप एक ऐसी फुटेज पर आ गए हैं जहां पर एक मंसूबा और डायरेक्शन हमें नजर आ रही है। आप देख रहे एक थैला है जिसमें फास्फोरस है, केमिकल है और दस्ताने उनको दिए गए ताकि उनके हाथ इफेक्ट ना हो और वो फास्फोरस
बकायदा दस्ताने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं।
और ये जो ब, ब, ये जो जो वाकया है ये 39 मिनट 23 सेकंड के बाद का वाकया है। यानी आप देखें ये पूरा थॉट प्रोसेस हो चुका है बम धमाके के बाद, बम ब्लास्ट के बाद, और उसके बाद ये 39 मिनट के बाद 23 सेकंड के बाद ये जो है वो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। इस दौरान ये केमिकल आ गया है, इस दौरान जो है वो इनके हाथों में हम सिग्निफिकेंटली कुछ चीजें देखते हैं। इनके हाथों में अब सरिये डंडे नहीं है, इनके हाथों में जो है वो कटर्स हैं जिससे ये दुकानों को जो है वो खोल सकते हैं, तोड़ सकते हैं ताले। इनके पास जो है वो दस्ताने हैं जो हम देख सकते हैं बआसानी और इस तरह की चीजें हैं। पेट्रोल है इनके पास, बोतलें हैं इनके पास और ये मोबाइल पर गुफ्तगू कर रहे हैं। मुख्तलिफ फुटेज में हम देख रहे हैं कि ये मुख्तलिफ आपस में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, मोबाइलों से रابطे कर रहे हैं।
इसमें कुछ लोग रिंग लीडर्स हैं इसके
जी नजर आ रहे हैं वो साफ तौर पर।
अच्छा इसमें ये एक चीज मुझे समझाएं कि इनके पास केमिकल्स भी हैं, इनको ग्लव्स भी मिल गए हैं, मेटल बार्स भी हैं, कटर्स भी हैं, तो इसका क्या मतलब है कि कुछ लोग तैयार थे कि जैसे ही वाकया होगा ये कोई गाइडिंग हैंड हमें इसमें नजर आ रहा है?
देखिए ना इतना वक्त हो गया है कि सोचने का अमल जो है जाहिर है 2-3 मिनट का होगा और इंस्ट्रक्शन देने का अमल जो है वो उससे भी कम मिनट का होगा। तो जो इस तरह की चीजें हैं
तो जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है वो किस नतीजे पे पहुंची है?
वो देखिए मसला है कि 2 दिन पहले जो वाकयात हुए हैं उसमें भी रिएक्शन इसी तरह का आया है लेकिन बहुत लेवल पर आया है।
आपका मतलब है कि 8 और 9
को, यानी 8 को जब ये तापोश नगर पे वाकया हुआ तो वहां पर जो है वो फौरी तौर पर कुछ लोग पहुंचे, उन्होंने एंटी पश्तून नारे लगाए, एंटी तालिबान नारे लगाए और एंटी गवर्नमेंट नारे लगाए और वहां पर कुछ जो है वो गाड़ियां जला भी दी उन्होंने। ये वाकया में वहां भी नजर आया। 9 मुहर्रम को जो है वो कस्बा मोड़ पे जब ये वाकया हुआ तो वहां पर भी इसी तरह का रिएक्शन नजर आया, मगर चूंकि वो इलाका ऐसा था और वहां आबादी इस तरह की थी कि वहां ये मोब ज्यादा देर ठहर नहीं सकता था तो उन्होंने रिएक्शन जाहिर किया और चले गए। अब आप जो देख रहे हैं ये एमए जिना रोड है, या रेंजर्स डिसअपियर हो गई है, पुलिस डिसअपियर हो गई है, वो एक ऐसी जगह पर चली गई जो उनकी पोजीशन थी वहां से वो विड्रॉ हो गए हैं और इस पूरे प्रोसेशन से बाहर एमए जिना रोड के इस पूरे सड़क से बाहर ऐसी जगह पर चले गए हैं जहां वो डिसअपियर नजर आते हैं। ठीक है, वहां मौजूदगी उनकी है लेकिन जो क्राइम कमिट हो रहा है वहां पर उनकी कहीं भी
बाहर। 2 अहम सवाल जो है वो मेरे जहन में है। एक तो मेरे जहन में सवाल है कि सिंध हुकूमत और कराची सिटी गवर्नमेंट के दरमियान बहुत सी कंट्रोवर्सी मची है, बहुत झगड़ा मचा है जिसकी मुझे नॉलेज है रिगार्डिंग फायर ब्रिगेड, कि फायर ब्रिगेड पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कहां पहुंचा। और दूसरा मसला है कि जिस तालिबान ग्रुप ने इस्मतुल्ला शाहीन जिस ग्रुप ने दावा किया कि ये सुसाइड अटैक हमने करवाया, हमने बंदा भेजा था, वो क्या कहानी थी, इन दोनों चीजों का मैं चाहूंगा कि आप जवाब दें लेकिन एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ये दोनों क्वेश्चन मैं ताहिर से एड्रेस करता हूं। नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे, मेरे साथ हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मोहम्मद ताहिर और हम बात कर रहे हैं कराची शहर में 28 दिसंबर को दहशतगर्दी के वाकयात के बाद जो आर्सन हुई, जो लूट हुई, जो वहां पे आतिशबाजी के वाकयात हुए उसके मुहरकात पे इस वक्त हम बात करें। ताहिर इसमें फायर ब्रिगेड की कंट्रोवर्सी क्या है सिंध हुकूमत के दरमियान और कराची सिटी गवर्नमेंट के दरमियान, ये क्या चपकलश है फायर ब्रिगेड
की? मोहित साहब वहां पर जो एमकेएम है बेसिकली शहर की जिम्मेदारी लेती है और शहर को ओन करती है, वो कहती है हमारा वोट बैंक है, वो कहती है वो हमारी ताकत है शहर
नाजिम
और एमकेएम। अब हुआ ये कि जब ये वाकयात होने लगे तो एमकेएम की जो क्रेडिबिलिटी है वो पूरी जो है दाव पर, उनके कंट्रोल और उनकी जो गिरफ्त है उस पर सवालिया निशान बन गए। जाहिर है वो गिरफ्त अपनी मजबूत नहीं कर सके, सिटी गवर्नमेंट उनकी थी और वो हुकूमत का हिस्सा भी थे और कराची उनका अपना शहर है। ठीक है ना, अब उसके फौरन बाद एमकेएम के जो मुख्तलिफ रहनुमाओं ने बिल्कुल जायज रिएक्शन दिया, उन्होंने सिंध से राबता किया। सिटी नाजिम के पास जो है वो एक ही विंडो थी और वो थी गवर्नर सिंध। गवर्नर सिंध के जरिए उन्होंने मैनेजमेंट जो एग्जीक्यूटिव मशीनरी थी उनको राबते में लेने की कोशिश की, उन्होंने जो है वो वजीर आला को लूप में लेने की कोशिश की, वजीर दाखिला को लूप में लेने की कोशिश की और कहा कि इस पर जो है वो रुकावट पैदा होनी चाहिए। ठीक है जी, लेकिन हुआ क्या, अमलन इनडिसिसिव नजर आया, पुलिस इनडिसिसिव नजर आई, वो सिटी नाजिम के मातहत नहीं है और नई रेंजर्स جو ہے وہ بھی ہمیں انڈیا سے
رینجرز جو ہے وہ انٹیریئر کے پاس ہے
وہ انٹیریئر کے پاس ہے وہ بھی کوئی فیصلہ
پولیس تو سٹی ناظم کے پاس
نہیں پولیس سٹی ناظم کے پاس نہیں ہے وہ آپ کی جو ہے وہ پروینشل چیپٹر میں آنی چاہیے اصل میں
آپ در حقیقت یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی جیسے بڑے شہر کے اندر چونکہ مختلف ایجنسیاں کام کر رہی ہیں
جی
ایک طرف اس میں فیڈرل ایجنسیاں ہیں پھر سندھ گورنمنٹ کی ایجنسیاں ہیں پھر سٹی گورنمنٹ کی ایجنسیاں ہیں تو وہاں پہ ایک سٹریسز پیدا ہو گیا وہاں
پہ فیصلہ کون لے فیصلہ کون لے اور میں دیکھیں آپ کے ناظرین کے لیے بتاتا چلوں کہ اس طرح کے واقعات میں جو کراچی میں روٹین رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو وہ موقع پر ایک مجسٹریٹ ہمیشہ موجود رہا ہے پرانے کمشنری نظام میں اور جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو جب ایگزیکٹو مشین بھی حرکت میں آتی ہے تو وہ فیصلہ مجسٹریٹ کرتا ہے موقع پر اور پولیس کو آرڈر کرتا تھا لیکن چونکہ اب تو
فائر بریگیڈ پہنچا کہ نہیں پہنچا
فائر بریگیڈ وہاں پہنچا سٹی ناظم کے بالکل دعوے کے مطابق پہنچا لیکن اس کی نوعیت ذرا مختلف ہے جس پر اعتراض سندھ حکومت کا آیا جو پہلا فائر بریگیڈ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں موہت صاحب یہ پہنچ رہا ہے یہ فائر ٹینڈر پہنچا ہے 4:15:47 پر سٹی ناظم نے کیلکولیٹ کیا ہے اپنی ویڈیو فوٹیج میں 2:32 لیکن اس کی ویزیبلٹی 2:30 کی
لیکن سٹی ناظم ٹھیک کہہ رہے ہیں
یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن دیکھیں یہ جائے وقوع پر پہنچا ہے ابھی نظر آتش نہیں ہوئی ہے دکانیں ابھی مارکیٹیں نظر آتش نہیں ہوئی ہے یا یہ بات پروو ہو گئی کہ فائر ٹینڈر موجود تھے ایم اے جنا روڈ پر موجود تھے اور ان کا ایکسس جو ہے وہ مطلب جائے وقوع پر ان کا ایکسس چند منٹوں اور چند سیکنڈوں کے وقفے میں تھا یہ بات اسٹیبلش ہو گئی اچھا جہاں جائے وقوع ہے وہاں تو ابھی لاشیں بکھری ہوئی ہے وہاں پانی نہیں پھینک سکتے وہاں آگ ہے اور لوگ ہیں زخمی اگر آپ پانی پھینکیں گے تو وہ تو بھر جائیں گے نا اس کا تو بالکل دوسرا افیکٹ ہوتا تو عام طور پر جائے وقوع پر اس طرح پانی نہیں پھینکا جاتا لیکن فائر ٹینڈر وہاں پہنچ گیا ہے ٹھیک ہے نا ان کی ویزیبلٹی بالکل صحیح ہے اور سٹی ناظم کا دعویٰ بالکل صحیح ہے
لیکن جہاں بعد میں آگ لگی
وہاں فائر بریگیڈ نہیں پہنچا اور یہی سندھ حکومت کا اعتراض ہے سندھ حکومت کا اعتراض جو سٹی ناظم پہ آیا جیسا کہ سٹی ناظم نے اعتراض کیا جو بالکل جائز تھا جب یہ واقعات ہو رہے تھے سندھ حکومت نے یہ اعتراض کیا کہ جو آگ لگی ہے مارکیٹ جو ہے وہ نظر آتش ہو گئی ہے کیمیکل استعمال ہو گیا ہے دستانے ہمیں نظر آ رہے ہیں اور چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہے اس وقت فائر ٹینڈر جو ہمیں نظر آتا ہے آگ بجھانے کے لیے جب پہنچتا ہے تو 2:19:52 گزر جاتے ہیں اور وہ آتے ہیں وہاں پر اور وہاں پہنچ کر بھی انہیں جو ہے وہ پانی کی پہلی فوار ڈالنے میں کم از کم جو ہے وہ 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں
تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلتے ہیں انویسٹیگیٹو پروسیس جس کو آپ قریب سے دیکھ رہے ہیں اور صاف پتہ چل رہا ہے کہ دیکھ رہے ہیں انویسٹیگیٹو ٹیمز اب اس کے بارے میں کیا کہ ایک تو ان کا سٹیٹس کیا ہے اس وقت انویسٹیگیشن کا اور پھر جو دعویٰ کر دیا تھا ایک طالبان کے گروپ نے اس مطلع شاہین نے کہ جی ہم نے ایک بندہ بھیجا جس نے خود کش حملہ کیا اس کے بارے میں آپ کیا کہا
دیکھو یہ دو مختلف سوال ہو گئے میں پہلے پہ ایک ایک سوال کو جو ہے وہ ایڈریس کرتا ہوں جو موجودہ اس وقت انویسٹیگیٹنگ مطلب سٹیٹس ہے وہ تو یہ ہے کہ 22 سے 24 لوگ اس وقت گرفتار ہیں کچھ ویلیوبل لیڈز مل گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک پولیٹیکل پریشر بھی شروع ہو گیا ہے
پولیٹیکل پریشر
جی ہاں وہ اس طرح کے جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کے مختلف جو ہے جو روابط ہے مختلف تنظیموں سے سیاسی تنظیموں سے یا مختلف سیکٹرین تنظیموں سے وہاں کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کے جو ہے وہ فون آنا شروع ہو گیا ہے ریئیکشن ان کا آنا شروع ہو گیا ہے تو ایک تو یہ پرابلم ہے جو ان کو ظاہر درپیش ہے دوسرا معاملہ یہ کہ یہ دو مختلف انسیڈنٹ کے طور پر اس واقعے کی تفتیش ہو رہی ہے ایک تو بم بلاسٹ وہ کیسے ہوا کس نے کیا کس طرح ہوا اس کے تعین ہونے کے بعد اب کون ہے اصل میں اس کے کیونکہ دیکھیں اس میں ایک امپورٹنٹ بات کیا ہے جب آپ کہتے ہیں سوسائڈ اٹیک ہے تو یہ ہمارے یہاں وے آف اٹیک نہیں ہے یہ ہمارا طریقے واردات نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا کمپلیٹ نتیجہ ہے جب آپ سوسائڈ اٹیک کہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک پکچر بن جاتی ہے کہ اس کو کس نے کیا ہوگا
اس میں تو ایک بہت بڑا مہمہ آلریڈی ہے نا اس میں ایک بہت بڑی میسٹری ہے کہ ایک چیز جو سوسائڈ اٹیک نہیں تھا اس کے بارے میں ایک طالبان گروپ نے جو ان نون تھا اس نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی کہ صاحب ہم نے بندہ بھیجا تھا ہم نے یہ حملہ کروایا ہے وہ کیا تھا
میں عرض کر رہا ہوں دیکھیں جب سوسائڈ اٹیک آپ کہتے ہیں تو وہ ایک کمپلیٹ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ کس نے کیا ٹھیک ہے جب آپ کہتے ہیں بم بلاسٹ ہوا تو پھر کئی آپشنز کھل جاتے ہیں ٹھیک ہے سوسائڈ اٹیک جب کہا گیا تو ٹھیک اسی وقت جو ہے وہ ایک ریسپانسبلٹی کلیم آ گیا اور وہ عصمت اللہ شاہین نام کے ایک آدمی نے جو ہے وہ ریسپانسبلٹی قبول کی وہ وانٹیڈ لسٹ میں موجود ہے لیکن میری معلومات کے مطابق اس کا نام عصمت اللہ معاویہ ہے ٹھیک ہے جی اور وہ کئی عرصے پہلے مختلف مطلب ایک عرصے تک وہ قلعم جیش محمد میں رہا ہے پھر اس کے بعد وہ چلا گیا وزیرستان میں اب عصمت اللہ شاہین اور عصمت اللہ معاویہ دراصل یہ ایک ہی آدمی ہے یا یہ دو مختلف نام ہیں पेपर्स में अगर ये इस्मतुल्लाह शाहीन दूसरा नाम है तो शायद।
लेकिन एक तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने ये भी कहा कि जी हमने नहीं कराया, हम पे इल्जाम लगाया
जी। उसके बाद जो मेन तालिबान है जिसे आप तहरीके तालिबान पाकिस्तान कहते हैं, उनके मरकजी तर्जुमान दो है, उन मरकजी तर्जुमानों का इस्मतुल्लाह शाहीन से कोई ताल्लुक नहीं है। मौलाना आजम तारिक ने जो इसका मरकजी तर्जुमान डिक्लेयर्ड है, उसने फौरन ही ये स्टेटमेंट दिया कि इस्मतुल्लाह शाहीन के इस वाकये से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तहरीके तालिबान इसमें मुलव्वस नहीं है। इसने एक सवाल को जन्म दिया और वो सवाल ये कि जो स्प्लिंटर्स ग्रुप है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करते हैं, क्या ये डुबियस है, क्या ये किसी के कहने पर करते हैं, क्या उनका वाकई वाकयात से कोई ताल्लुक होता है या नहीं?
इन स्प्लिंटर ग्रुप के एक वाकया हुआ, फिर स्प्लिंटर ग्रुप ने उसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्प्लिंटर ग्रुप को भी खड़ा किया जाता हो
और वो इसीलिए किया जाता हो? यानी एक बहुत बड़ा कोई दिमाग है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इंडिया में, आप जाए ना जो अजमल कसाब वाला वाकया हुआ है, इंडिया में जो वाकया हुआ था उसके फौरन बाद वहां हैदराबाद दक्कन की तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल कर ली थी, लोकल तंजीम ने, लेकिन उसके फौरन बाद पता चला जब अजमल कसाब गिरफ्तार हो गया, अगर वो वहां पर गिरफ्तार ना होता, वो मर जाता, तो वो जो हैदराबाद दक्कन का अकाउंट है वही दरअसल जारी रहता। अजमल कसाब की गिरफ्तारी ने ये साबित किया कि ये तो कोई पाकिस्तानी तंजीम का आदमी है, तो अगर वो मर जाता वहां पर तो ये तो कभी प्रूव नहीं होता।
ये जो वाकया कराची का हुआ, जो कि वक्त हमारा बिल्कुल अब कम है, ये जो कराची का वाकया हुआ, जिस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने रिएक्ट किया, रहमान मलिक साहब इस पर स्टेटमेंट देते रहे, डीजी रेंजर्स की हमने स्टेटमेंट सुनी, उन्होंने उसकी बकायदा अपने एक जवान को उसकी मुबारकबाद दे दी कि किस तरह से उसने रोक के इसको रोका है और वो ना,
आपने वो तस्वीर में देख लिया कि उनकी बॉडी पूरी इंटैक्ट है,
उसकी बॉडी इंटैक्ट वो मैंने देखी, हम दिखा नहीं सकते। तो सिटी पुलिस, रेंजर्स और इंटीरियर मिनिस्ट्री, इन तीनों की जो साख है, इनकी जो क्रेडिबिलिटी है, इनका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो तो बड़ा मजरूह हो गया।
देखिए मोहित साहब, ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया है, मखमसा है, और ये हमारे जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात चल रहे हैं उसकी शायद सबसे ज्यादा जो है ना वो संगीनी है ये, कि हमारे यहाँ इस तरह के अकाउंट खोल दिए जाते हैं। कभी कराची में सेक्टेरियन अकाउंट था, कभी कराची में जो है वो लिसानी अकाउंट था, कोई भी वाकया होता था तो दो तीन तंजीमों के सर डाल दिया जाता था, फिर सेक्टेरियन अकाउंट खुल गया, कोई भी वाकया होता था वो सेक्टेरियन में डाल दिया जाता था। अब ये सुसाइड अटैक का एक ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में अकाउंट खुल गया है। कुछ भी होता है, आप अगर उसकी तहकीक नहीं कर सकते, उसकी तफ्तीश नहीं कर सकते, वैल्यूएबल आपके पास लीड्स नहीं होती, या आप मेहनत नहीं करना चाहते, या आप किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा होते हैं, तो आप उसे सुसाइड अटैक कहते हैं और उस अकाउंट में डालकर उस वाकये को डंप कर देते हैं। आमतौर पर हमें सुसाइड अटैक के बाद कभी भी किसी वाकये के जो है वो सुराख या जो है वो चीजें नहीं मिली है। जो हमें चीजें मिली है वो किस तरह मिली है, वो कभी किसी तफ्तीश के नतीजे में नहीं मिली है, इत्तेफाक से और अचानक किसी वाकये में कहीं से हमें कोई बंदा गिरफ्तार मिलता है और वो कमिट कर लेता है कि वाकया मेरा किया हुआ है।
आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन से भी मजीद रिजल्ट्स निकलने वाले हैं?
जी, अगर इस पर कोई पॉलिटिकल असर ना हो, जो कराची के मुख्तलिफ आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनके कराची के ग्राउंड पे जो है वो कुछ मफादात है, वो मफादात इस इन्वेस्टिगेशन के साथ अगर न टकराए,
इस वक्त की इन्वेस्टिगेशन सेफ,
तो शायद ये
इस वक्त ये सेफली प्रोसीड कर रही है, ये ऑलमोस्ट ये कॉम्प्रोमाइज
में खतरा पैदा हो गए।
पहला वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका है, हमें यहाँ ज्वाइन करने का स्पेशली बहुत शुक्रिया आपका। नाजी, बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं इस डिस्कशन के, इस इन्वेस्टिगेशन के, जिन्हें हम इस प्रोग्राम में डिस्कस नहीं कर सके, लेकिन एक बात बड़ी वाजे है कि दहशतगर्दी का जो खौफनाक वाकया कराची भी हुआ, जिसकी जिम्मेदारी एक तालिबान ग्रुप ने इस खुदकश हमला कह के ले ली, जिसके बारे में सबका ये ख्याल था शुरू में कि खुदकश हमला है, वो दर हकीकत एक खुदकश हमला नहीं था। लेकिन अभी और भी बहुत सी पेचीदगियां हैं इसमें, वो सैकड़ों हजारों आतिशजदगी के वाकयात जो हुए उसके पीछे गाइडिंग हैंड कौन सा था, ये तालिबान ग्रुप कौन सा था मिस्टीरियस जिसने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली, और खतरा यह है कि कराची की मखसूस सियासी हालात में शायद ये इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस अपने मंतकी अंजाम को ना पहुंच सके। देखते रहिए बेहतर से बेहतर तज्जिए के लिए दुनिया टुडे। बहुत शुक्रिया।
चलो भाई।